लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra le figure di anziani più rilevanti nei Vangeli c'è Nicodemo.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। सुसमाचार में हम निकोदेमुस को यहूदी समुदाय के नेताओं में एक अति महत्वपूर्ण बुजुर्ग व्यक्तित्व स्वरूप पाते हैं, जो रात में गुप्त रूप से यीशु के पास उन्हें जानने हेतु आते हैं। उनके बीच हुई वार्ता में हम यीशु के मुक्तिदायी प्रेरितिक रहस्य को प्रकट होता सुनते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उनमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के दर्शन हेतु एक व्यक्ति को ऊपर से पुनः जन्म लेने की जरूरत है। इसका अर्थ इस दुनिया में पुनः जन्म लेने से नहीं है, जहां हम इस बात की आशा करते हैं कि यह हमारे लिए एक बेहतर जीवन के अवसर उत्पन्न करेगा। यह हमारे जीवन की सारी बातों को व्यर्थ साबित कर देगा, उन्हें मिटा देगा, मानो वे सारी बातें अपने में एक असफल प्रयोग थे। संत पापा ने कहा कि ऊपर से जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है। यीशु जिस जन्म के बारे में जिक्र करते हैं उसका अर्थ दूसरा है। यह जीवन ईश्वर की निगाहों में कीमती है। यह हमें इस बात से वाकिफ कराता है कि हम ईश्वर की कोमलता में प्रेम किए जाते हैं। ऊपर से जन्म लेना हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाता है, जहां हम अपने को पवित्र आत्मा से नए जीवन में प्रवेश होता पाते हैं। यह बपतिस्मा के जल द्वारा प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करना है, जहां ईश्वर के प्रेम में एक नए प्राणी स्वरूप हमारा मेल मिलाप हुआ है। यह हमारा दोबारा भौतिक जन्म नहीं, अपितु ईश्वर की कृपा में ऊपर से जन्म लेना है। निकोदेमुस इस बात को नहीं समझ पाते और बुजुर्गावस्था में इस जन्म की असंभावता के बारे में सवाल करते हैं। मनुष्य अनिवार्य रूप से बुढ़ापे की स्थिति को प्राप्त करता है। एक युवा का अनंत सपना स्थायी रूप से पीछे छूट जाता है। कोई भी जन्म अपनी प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है। कोई ऐसे लक्ष्य की कल्पना कैसे कर सकता है जिसका स्वरूप जन्म से तैयार हो? और निकोदेमुस इसी भांति विचार करते हैं और वे यीशु की बातों को नहीं समझ पाते हैं। यह पुनर्जन्म अपने में क्या है? निकोदेमुस की असहमति हमारे लिए अति विचारणीय है। यीशु के वचनों के प्रकाश में हम इसे पलट कर देख सकते हैं, जो बुजुर्गावस्था में हमें प्रेरिताई की खोज करने में सहायक होता है। वास्तव में बुजुर्गावस्था ऊपर से जन्म लेने हेतु कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि यीशु हमें कहते हैं, बल्कि यह अपने को अवलोकित करने हेतु एक अवसर होता है, जहां हम अपने को अपनी खोई हुई आशा से अलग करते हैं। हमारा युग और हमारी संस्कृति युवाओं के अनंत मिथक को जन्म देती है, जो अविनाशी शरीर के रूप में हताशी जुनून है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, क्यों बुजुर्ग अवस्था की सराहना नहीं की जाती है? क्योंकि यह एक मिथक के अंत का निर्विवाद प्रमाण है, जो हमेशा एक युवा शरीर के साथ अपनी माँ के गर्भ में वापस लौटने की चाह रखता है। उन्होंने कहा,
La tecnica si lascia attrarre da questo mito in tutti i modi.
तकनीकी हर तरह इस मिथक से मोहित है। मृत्यु को हराने की चाह में प्रतीक्षा करते हुए हम विभिन्न प्रकार की औषधि और सौंदर्य की चीजों से अपनी बुजुर्गावस्था को छिपाने, कम करने और इसे मिटाने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप में हमारा स्वास्थ्य एक बात है, वही मिथक जो इसकी देख रेख करता एक दूसरी बात। हम यद्यपि इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों चीजों के कारण हमारे बीच एक तरह से द्विधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सदैव युवा बने रहने की चाह और इसके लिए हमेशा बहुत सारी चीजों को करना हमारे बीच में द्विधा की स्थिति को व्यक्त करती है। संत पापा ने इस संदर्भ में एक विवेकी इतालवी नायिका मगनानी का उदाहरण दिया। युवा दिखने हेतु उनकी झुर्रियों को दूर करने की सलाह पर उन्होंने कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। वे झुर्रियां अनुभव, जीवन की निशानियां, प्रौढ़ता को व्यक्त करती हैं, जो एक जीवन यात्रा को बतलाती है। युवा दिखने हेतु उनके साथ छेड़खानी करना उचित नहीं है। इसके बदले हमें चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, जो हृदय से आता है। यह हृदय है जहां हम यौवन रूपी अच्छी शराब को पाते हैं, जो उम्र के साथ बेहतर होता जाता है। जीवन हमारे भौतिक शरीर में एक अनंत सुंदरता रूपी सच्चाई है, मानो कोई कलाकृति जो अपनी अपूर्णता के कारण एक अद्वितीय आकर्षण बनती है। धरती में हमारा जीवन अपने में पूर्ण नहीं, अपितु एक शुरुआत है। वैसे ही हम इस संसार में सदैव वास्तविक व्यक्ति स्वरूप आते हैं, जो उम्र में बढ़ते जाते लेकिन सदैव असल रहते हैं। लेकिन स्थान और समय के संदर्भ में हमारा भौतिक शरीर इस धरती पर बहुत छोटा है, जिसे हम इस दुनिया के समय अनुसार बरकरार रखते हुए अपने जीवन के मूल्यवान अस्तित्व को पूरा करते हैं। यीशु कहते हैं कि विश्वास, जिसके द्वारा हम सुसमाचार की घोषणा करते हुए ईश्वरीय राज्य की स्थापना हेतु भेजे गए हैं, हमारे लिए एक अति विशेष प्रयास की मांग करता है। यह हमें ईश्वर के राज्य को देखने में मदद करता है। हम अपनी आशा में कई संकेतों को वास्तव में देखने हेतु सक्षम होते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर में अनंत कार्यों की पूर्णता का संकेत देता है। हमारे लिए वे निशानियां बहुत सारे रूपों में यीशु ख्रिस्त के प्रेम में प्रकाशित होते हैं, और यदि हम उन्हें देखते हैं तो हम उनके द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों के रूप में नवीन बनते और ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
La vecchiaia è la condizione concessa a molti di noi nella quale il miracolo di questa nascita dall'alto può essere assimilato intimamente e reso credibile.
बुजुर्गावस्था हम में से बहुतों के लिए वह स्थिति है जहां हम इस जन्म के चमत्कारों को देख सकते, उन्हें अपने में संग्रहित करते और उन्हें मानव समुदाय के संग विश्वसनीय ढंग से साझा कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के लिए एक विषाद का संचार नहीं करता, बल्कि हमारे अंतिम लक्ष्य हेतु प्रेम का संचार करता है। इस संदर्भ में बुजुर्गावस्था हमारे लिए एक अद्वितीय सुंदरता है, जहां हम अनंत जीवन की ओर यात्रा करते हैं। कोई भी माता के गर्भ में पुनः प्रवेश नहीं कर सकता है। यह किसी भी तकनीकी और उपभोक्तावादी विकल्प के द्वारा संभव नहीं है। यद्यपि यह संभव भी हो तो यह अपने में दुखद होगा। बुजुर्गावस्था अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर बढ़ना है, जो हमारे लिए ईश्वर का निवास है। इसलिए बुढ़ापा एक जैविक और रोबोटिक अस्तित्व के तकनीकी भ्रम से भविष्य को अलग करने का एक विशेष समय है, क्योंकि यह ईश्वर की रचनात्मक और उत्पादक गर्भ की कोमलता को खोलने का एक खास समय है। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा के अंत में बुजुर्गावस्था की कोमलता पर जोर दिया, जो स्वतंत्र रूप में हमें प्रेम के योग्य बनाता है। यह समझ और ईश्वरीय कोमलता रूपी द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को ना भूलें कि ईश्वर का आत्मा हमारे लिए निकटता, कोमलता और करुणा का स्रोत है। बुजुर्गावस्था जीवन के इस आयाम को समझने हेतु हमारी मदद करता है। यह वह समय है जो ईश्वरीय कोमलता में सभी के लिए एक राह का निर्माण करता है। बुजुर्गावस्था की प्रेरिताई हमारा मेल कराते हुए ऊपर से जन्म लेने में हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें कृपा प्रदान करे जिससे हम इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम को पुनः खोल सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, फिर गई है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार या आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित पोलिश विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत हेडविग को याद किया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उनका जीवन पोलैंड और यूरोप के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1174 ईस्वी में पैदा हुई संत हेडविग पोलैंड की रानी एक बवेरियन परिवार से आती हैं। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को बांट दिया। वे बावेल महागिरजाघर के ब्लैक क्रूज के सामने घंटों गहन प्रार्थना किया करती थी। उनके बेटे हेनरी द पियूस ने 1241 में अपने सैनिकों के साथ टार्टस के आक्रमण का कड़ा विरोध किया। हेडविग ने उन्हें साहस दिलाया और क्रूसित येसु मसीह से लेग्निका की लड़ाई रोकने के लिए मिन्नतें की। युद्ध के दौरान हेनरी द पियूस की मौत हो गई, लेकिन टार्टस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। सिलेसिया और पोलैंड की भूमि पर फिर से शांति लौट आई। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, पोलैंड की रानी हेडविग के संत घोषणा समारोह के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने याद किया कि उनके काम के माध्यम से पोलैंड लिथुआनिया और रूस के साथ एकजुट था। यूरोप में शांति के लिए क्रूसित येसु के पैरों तले उसकी तरह प्रार्थना करते हुए उसकी मध्यस्थता पर भरोसा रखें। उधर नाइजीरिया ओंडो धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जूड अरोगुंडेड ने अपने धर्म प्रांत के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। ओंडो राज्य के ओवो स्थित संत फ्रांसिस जेवियर पल्ली में पेंतेकोस्त रविवार को पवित्र मिसा समारोह के दौरान अज्ञात हथियारबंद लोगों ने धावा बोल दिया और बच्चों सहित कम से कम 50 विश्वासियों को गोली मार दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। अभी भी कई लोग इस भयावह घटना के सदमे से जूझ रहे हैं। वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ओंडो के धर्माध्यक्ष जूड अरोगुंडेड ने पल्ली वासियों के इस कठिन समय के बारे में बातें की और बताया कि कैसे विश्वासी रविवार के हमले के सदमे, दर्द और दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार के हमले की खबर मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए धर्माध्यक्ष ने कहा, मेरी पहली भावना पूर्ण अविश्वास थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई मारने के इरादे से कैसे एक पवित्र स्थान गिरजाघर में जा सकता है। वे बताते हैं कि उसने तुरंत सुरक्षा कर्मियों और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को फोन करना शुरू कर दिया जिसे वे जानते थे और स्थिति में कौन मदद कर सकता है। वे बताते हैं कि कई लोगों को अभी भी चिकित्सा देखभाल, गोली निकालने और एक्सरे की आवश्यकता है। मामूली चोट वाले लोगों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ की सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। कुल मिलाकर हमले में लगभग 80-90 पीड़ितों की स्थिति स्थिर है। वे हमले में मारे गए कई लोगों, माता पिता, बच्चे, पूरे परिवार के लिए शोक व्यक्त किया। धर्माध्यक्ष ने घातक हमले के मद्देनजर नागरिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों से निकटता के संदेशों का स्वागत किया। वे विशेष रूप से टेलीग्राम और सांत्वना भरे शब्दों के लिए संत पापा फ्रांसिस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि वे जल्द ही अपने धर्म प्रांत की त्रासदी की पूरी रिपोर्ट वाटिकन भेजेंगे। धर्माध्यक्ष ने गौर किया कि कलीसिया के इतिहास में ऐसी घटनाएं नई नहीं है, फिर भी कलीसिया ने अपने अच्छे कार्यों को दूर होने नहीं दिया है। इन दिनों वे पीड़ितों के परिवारों और हमले में अपने प्रियजनों को खोने वालों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। हर तरह की मदद करने के प्रयासों में भली इच्छा रखने वाले लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। उधर एक और प्रवासी कारवां आगे बढ़ रहा है, इस बार दक्षिणी मेक्सिको से शुरू हो रहा है। अपने प्रवास की स्थिति पर विचार, मूल्यांकन और स्वीकृत होने की प्रतीक्षा से थके हुए प्रवासी कारवां मेक्सिको के दक्षिण में गहरे तपचुला से निकल गए हैं। कारवां में ज्यादातर मध्य अमेरिकी, साथ ही क्यूबा, वेनेजुएला और हाइतियन शामिल हैं। कई हजार लोगों की संख्या के साथ कारवां का आकार बढ़ने की संभावना है। सबसे गरीब और हताश लोग अपने साथ छोटे बड़े बच्चों को ले जा रहे हैं। रास्ते में बारिश और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं। आशा और दृढ़ विश्वास के साथ लंबी दूरी तय कर रहे हैं। कई लोगों के पास कड़ी अमेरिकी सीमा सुरक्षा को भंग करने के लिए बहुत कम संभावना है। इस बीच अमेरिका का शिखर सम्मेलन चल रहा है, हालांकि क्यूबा, वेनेजुएला, निकारगुआ के नेताओं को बाहर रखा गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मानुएल का कहना है कि वह इस टिप्पणी में शामिल नहीं होंगे। मैं बहिष्करण की नीति को बदलने की आवश्यकता में विश्वास करता हूं। बोलीविया, होंडुरास, ग्वाटेमाला और बारबुडा के नेता भी वहां नहीं हैं। मेक्सिको में प्रवासियों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। पिछले महीनों में कारवां को रोक दिया गया है और वापस भेज दिया गया। कई लोगों ने एक तरफा टिकट के साथ उड़ानें भरी हैं या मेक्सिको में अस्थायी निवास की अपील की है, लेकिन अधिकांश के लिए अंतिम मंजिल संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसे जैसे बाधाएं आ रही हैं, उनका अपर्याप्त दिवा स्वप्न दुखद स्वप्न में तब्दील होता जा रहा है। उधर यूक्रेन का एक सबसे बड़ा धर्म प्रांत खार्किव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। धर्माध्यक्ष पावलो होंचारुक, जिन्होंने एक सैन्य चैपलिन के रूप में भी सेवा की है और युद्ध के कारण होने वाली पीड़ा से परिचित हैं, वे बताते हैं कि कैसे लोगों को भौतिक जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संबल की जरूरत है। कभी कभी केवल गले लगाना मात्र उन्हें एहसास कराता है कि प्रभु निकट हैं। खार्किव जापोरिजिया के लैटिन रीति के धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पावलो हिंचारुक ने कहा कि उनका धर्म प्रांत बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में यूक्रेन के 25 क्षेत्रों में से 7 शामिल हैं। धर्म प्रांतीय कूरिया खार्किव में है। धर्माध्यक्ष बताते हैं कि उनके पुरोहित कब्जे वाले क्षेत्रों में नहीं हैं और उन क्षेत्रों में जो रूस के कब्जे में नहीं है, पुरोहितों का सबसे महत्वपूर्ण मिशन लोगों के साथ रहना, दूर दराज क्षेत्रों में उन लोगों तक पहुंचना, उनके साथ प्रार्थना करना। वे कलीसिया से यही उपेक्षा करते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।